एक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी। मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी। एक थी माँ रूहानी, एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी।
किसी शहर में एक बहुत प्रसिद्ध टेलर दर्जी था और एक व्यक्ति ने उस दर्जी की ख्याति सुनी और उसे लगा कि मुझे अपना कमीज, अपना शर्ट इसी से सिलवाना है। और उसने कपड़ा खरीदा और वो कपड़ा लेकर उस दर्जी के पास गया और उसे कहा कि मुझे एक कमीज सिलवाना है, शर्ट। दर्जी ने कहा ठीक है, एक हफ्ते के बाद आ जाना। एक हफ्ते के बाद वो व्यक्ति पहुंचा कमीज लेने के लिए और उसे बहुत एक्साइटमेंट था क्योंकि उसने बहुत नाम सुना था उस दर्जी का। और जब एक हफ्ते के बाद उसने उस कमीज को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। और वो व्यक्ति कहता है मैं इसे पहन के देखना चाहूंगा। और वो वो शर्ट पहन के देखता है। जैसे ही पहन के देखता है वो पाता है कि लेफ्ट साइड का जो हैंड है बाजू कमीज की बहुत बड़ी बनाई है और राइट साइड की जो बनाई है छोटी बनाई है। तो वो कंप्लेन करता है ये क्या है। वो टेलर कहता है मैं लेटेस्ट टेलर हूं, आर्टिस्टिक, द मोस्ट क्रिएटिव। इस समय मार्केट में यही फैशन चल रही है, तुमको कुछ पता ही नहीं है फैशन के बारे में। दिस इज ट्रेंडिंग, ये लेटेस्ट ट्रेंड है। वो कहते हैं अच्छा मुझे पता ही नहीं। कमीज सिलवाया, एक बाजू बहुत बड़ा और एक छोटा। वो टेलर कहता है तुम्हें केवल चलते समय ऐसे चलना है, लेफ्ट साइड को ऊपर कर दो और ये नीचे, तो बराबर सेटिंग होगी, बाकी कमीज में कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, वो व्यक्ति खुश हो जाता है, उस कमीज को पहनता है और पहनने के बाद और एक चीज उसे दिखती है। इधर पीछे कपड़े का गुच्छा है, मतलब जैसे जगह है उसके लिए वो बनाया हुआ है। वो कहता है ये क्या है। वो टेलर कहता है फिर वही बात, तुम्हें लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट फैशन का पता ही नहीं है संसार में क्या चल रहा है। तुम जब चलो तो ऐसे झुक के चलो ताकि वो जो कपड़ों का जो अलग से बना है उसमें प्रॉपर फिट हो जाए, अर्थात जैसे कोई हंच्ड बैक, जिस व्यक्ति को कुबड़ निकल आया है। तो एक तो ऐसे चलना है और एक तो झुक के चलना है। कहते अच्छा मुझे पता ही नहीं था ये, तो कहते यही तो लेटेस्ट फैशन है। तो वो व्यक्ति मार्केट से, टेलर की दुकान से निकलता है ऐसे और झुक के, क्योंकि लेटेस्ट फैशन है, और बहुत खुश होता है। चलते चलते उसे एक दूसरा व्यक्ति कहता है इतना बढ़िया शर्ट जरूर उसी टेलर ने सिलाया होगा। ये सुनकर तो उसे और ज्यादा खुशी होती है कि वास्तव में मैंने राइट टेलर से अपनी कमीज सिलवाई। फिर भी वो व्यक्ति आश्चर्य से पूछता है तुम्हें कैसे पता। तो वो मित्र कहता है ऐसे कैसे नहीं पता, पूरे शहर में एक ही तो टेलर है जो हैंडीकैप के लिए कमीज सिलवाता है। वो व्यक्ति प्रभावित हो गया था उसके नाम और मान से, इसीलिए ऐसे कर दर्जी के पास गया जिसका बहुत मान है, और जो मुख्य चीज है शरीर उसको भूल गया। तो यहां दो बातें हैं, एक कमीज और एक शरीर। कमीज महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर महत्वपूर्ण है। और यही बात अध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू है। एक तरफ है शरीर, मन और आत्मा। या तो हम शरीर से प्रभावित होते हैं या मन की बातों से प्रभावित होते हैं, जो बहलाता है, जो फुसलाता है, जो भ्रमित करता है, जो कहता है ये करो ये करो, ये खरीदो ये खरीदो, ये चाहिए ये चाहिए, ये होना चाहिए, जो भटकाता है। और जो मुख्य है आत्मा, वो भूल जाती है। जैसे ये व्यक्ति भ्रमित हो गया, उसे पता था कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसा कोई शर्ट नहीं होता है कि जिसकी एक तरफ बड़ी और एक तरफ छोटी, परंतु फिर भी वो मान के टेलर सही शर्ट सही बॉडी को ठीक कर रहा है। उसमें उसे दोष नहीं दिखाई दे रहा। उसी तरह परंपरा से जो चल रहे हुए सिद्धांत है उनमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में है, ऐसा व्यक्ति सोचता है। हो सकता है उन्हीं में प्रॉब्लम हो। जो शुरुआत में किसी ने चालू किया वो उस समय की परिस्थिति अनुसार चालू हुआ था और उसे अभी केवल ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है। विवेक तो मन भटकाता है, मन बरगलाता है, प्रभावित होता है, धोखा देता है या फिर आलस में डूबता है। आत्मा में संकल्प है पर उस संकल्प को मन के कमजोर विचार क्षीण कर देते हैं। कल भी हमने चर्चा की थी अपने संकल्प को प्रगाढ़ करना है। एक संकल्प आ जाए फिर उस संकल्प के बीज को पानी देना है। सभी जानते हैं, मम्मा से किसी ने कभी पूछा था कि आप नए हो और आपसे पुराने यहाँ कितने हैं, फिर भी आप इतने आगे कैसे चली गई। मम्मा ने पहले तो कुछ कहा नहीं, फिर भी जब जबरदस्ती पूछा तो कहा कि इसमें कोई व्यक्ति जब आगे जाता है तो बहुत सी बातें होती है, बहुत सी बातों का तालमेल बिठाना होता है, तब कहीं वो आगे जाता है। परंतु पूछने वाले ने पूछा, फिर भी आप आगे कैसे गई, उसकी वो पावरफुल एक पॉइंट बताओ, कोई एक बात। और तब मम्मा ने कहा था बहुत समय के बाद सोच विचार के कि मैं जो एक बार संकल्प करती हूँ वो इतना दृढ़ होता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए उसे पूर्ण करके ही रहती हूँ, और इसी वजह से मैं आगे गई। ये मम्मा का उत्तर था, संकल्प को दृढ़ करना, संकल्प को प्रगाढ़ करना और उसे कल रात भी हम चर्चा कर रहे थे, बार बार स्मरण, बार बार याद करते रहना, अपने स्मरण को पुकारना, आह्वान करना। जो भी हमने सोचा है स्वयं के लिए और क्या विधि हो सकती है संकल्प को प्रगाढ़ करने की, कैसे संकल्प को शक्तिशाली बनाया जाए। संकल्प तो ले लिया है, बहुत दृढ़ है, वो कोई भी हो सकता है। हम एक फिक्स्ड लाइफस्टाइल में बंधे हैं। अगर कोई भी चेंज करना है, कोई भी परिवर्तन लाना है, चाहे भोजन में, चाहे दिनचर्या में, चाहे व्यवहार में, तो मन मना करता है, उसे पसंद नहीं है, उसे चाहिए कि जो चल रहा है वही चलने दो, इसमें जरा भी कुछ और चेंज ना आए। वो बहुत कंफर्ट जोन में है, उसके बाहर वो निकलना नहीं चाहता। तो अब दृढ़ संकल्प करना अर्थात कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, दृढ़ संकल्प करना अर्थात जो सुविधाजनक दिनचर्या बना के रखी है उसमें हलचल पैदा करना, क्योंकि संकल्प हम कर रहे हैं और संकल्प अर्थात विद्रोह, विद्रोह किससे, स्वयं के संस्कारों से विद्रोह। कल कहा था ना, होमवर्क एक कंडीशन, पुराने संस्कार, अपमान अभिमान की महसूसता से भी मुक्त, के दाग से मुक्त। तो जब संकल्प को दृढ़ करना है तो पहली बात बताई, उसको दोहराना है दिन भर में और फिर रात में सोते समय। और क्या कर सकते हैं जिससे संकल्प दृढ़ हो जाए? व्रत और अटेंशन, व्रत, दृढ़ प्रैक्टिस, ये दोहराव अर्थात ही प्रैक्टिस, उसके इम्पोर्टेंस को जाना, उसके बाद संकल्प लिया, व्रत लिया, अब उसको दृढ़ करना है, उसके बारे में लिखा, उसके बारे में चर्चा की, डिक्लेयर किया पब्लिकली कि आज से मैं, कल से मैं इतने बजे अमृत वेला उठूंगा, सबके सामने बोल दिया, अब सो नहीं सकते क्योंकि वो सारे पहले से करने वाले हैं और उनके सामने बोल दिया, तो ये भी एक विधि है। पर ये सब ठीक है, और क्या हो सकता है? हाँ, विजन बोर्ड बनाना, विजन बोर्ड, अपनी प्रतिज्ञा, जो भी प्रतिज्ञा बनाई, विजन बोर्ड, भीष्म प्रतिज्ञा, उस दिन हमने देखी थी प्रताप प्रतिज्ञा, जब तक अपनी मातृभूमि को मुक्त नहीं कर देता तब तक महलों में नहीं रहूंगा, तब तक बिछोने पर नहीं सोऊंगा, तब तक सोने के या धातु के पात्र में भोजन नहीं करूंगा, घास ही मेरा बिछोना होगा, जंगल में ही रहूंगा और किसी भी पात्र में भोजन नहीं करूंगा, धातु के, सोने के, सुख सुविधाओं का त्याग करूंगा। इसे प्रताप प्रतिज्ञा की कहा जाता है। तो वो प्रतिज्ञा तो ले ली, भीष्म प्रतिज्ञा तो ले ली, परंतु अब उसको और दृढ़ करना है, उसको अवचेतन तक पहुंचाना है। ये तो कॉन्शियस माइंड ने सब कुछ किया, उसके बारे में लिखा, उसको दूसरों को बताया, विजन बोर्ड बताया, रोज रोज उसको देखते रहे, और क्या किया जा सकता है? उसके फायदे नुकसान सब लिखा कि ये अगर मैं करूंगा, अपने आप को देखा अपने संपूर्ण स्वरूप में कि ये सब उसमें है और वो मेरी तरफ आ रहा है, मिल रहा है, गले मिल रहा है, हाथ मिला रहा है, वगैरह वगैरह, वो सब संकल्प की प्राप्ति को रिवाइज करना, अमृत वेला रिवाइज करना, दिन में रिवाइज करना, रात में रिवाइज करना। एक और विधि है जो श्वास के साथ जोड़ी गई है। जैसे हम श्वास छोड़ देते हैं और उसको बाहर रोक के रखते हैं, श्वास लिया और बाहर रोक के रख दिया, उस समय चेतना आतुर होती है थोड़ी देर के लिए, किसके लिए? श्वास वापस लेने के लिए, हलचल मचती है कि कब लू, कब लू, कब लू। उस समय उस संकल्प को दोहराना, बाहर छोड़िया छोड़ा हुआ है या फिर अंदर रोक के रखा है कुंभक, उस समय संकल्प करना, परंतु श्वास अब लेना मत, बाहर ही रखना है। जब वो अवस्था नहीं आ जाए मरने की, तब तक श्वास बाहर ही रोक के रख देना, जितना रोक सकते हैं, और उस रोकी हुई अवस्था में संकल्प करना, मैं दृढ़ संकल्प कर रहा हूं, डैश 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 डैश, जो भी करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता मेरा स्वभाव है, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। वो भाई ने गीत गाया था ना उस दिन, साधना नित्य साधना, धवल क्रांति की अखंड साधना। करे कौन सा संकल्प लेंगे? संकल्प आप बताओ, फिर करेंगे। मैं शक्तिशाली हूं, मुझ में शक्तियां सर्व शक्तियां समाई हुई है। संकल्प क्या है? मैं शक्तिशाली हूं, मुझ में सारी शक्तियां समाई हुई है। तो अभी लंबा श्वास पहले भीतर ले लेंगे और फिर उस श्वास को छोड़ देंगे और जोर से छोड़ेंगे फोर्स के साथ, और एक बार छोड़ दिया कि उसे बाहर ही रोक देना फिर। और उस रोकी हुई अवस्था में मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मुझ में समस्त शक्तियां समाई हुई है। स्टार्ट। श्वास लेंगे, श्वास जब बाहर है आंखें बंद होगी और उस अवस्था में एक पावरफुल संकल्प, वो संकल्प परिवर्तन का संकल्प हो, वो संकल्प हो जो आपके दिनचर्या में वो क्रिया नहीं है और वो लानी है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एग्जाम्पल बैठा हुआ योग, एग्जाम्पल इंटरनेट एडिक्शन, एग्जाम्पल ज्ञान का मनन चिंतन कम है। मैं ज्ञान का मनन चिंतन करूंगा, मैं ज्ञान का मनन चिंतन करूंगा। सत्य की प्यास बिना चिंतन के पूरी नहीं होती। मैं चिंतनशील आत्मा हूं, मुझे गहन चिंतन करना है। अभी दूसरा संकल्प लेंगे एकांतवास का, अंतर्मुक्ता का। मम्मा सुबह 2 बजे उठकर छत पर बैठ जाती थी, अंतर्मुक्ता उसका स्वभाव था, उनको अंतर्मुखता बहुत पसंद। क्या? इट वॉज अ पार्ट ऑफ नेचर। हंसी मजाक मम्मा को बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें व्यर्थ कम आ जाता है पता ही नहीं चलता है। रूहानी हंसी मजाक लौकिक हंसी मजाक कब बन जाता है? उसके बीच की सीमा रेखा बहुत जीनी बहुत थिन है। मैं एकांत प्रिय आत्मा हूं, मौन प्रिय आत्मा हूं। तो संकल्प करेंगे मैं अंतर्मुखी हूं, तो सभी श्वास भीतर और जोर से श्वास बाहर छोड़ेंगे। आंखें बंद करके उसे जितना हो सके बाहर ही रोक के रखना है, और उस रोकी हुई अवस्था में मन की भूमि में उस संकल्प के बीज को डाल देना है। तब तक उसके डाले रखना है जब तक बेचैनी ना हो जाए, हलचल ना हो जाए, मन कहे कि बस अब मर जाऊंगा, अब लेना ही है श्वास, तब तक। स्टार्ट। मैं अंतर्मुखी आत्मा हूं, मौन प्रिय आत्मा हूं, ये 2 संकल्प जोड़ेंगे। स्टार्ट। थक जाने के बाद श्वास ले लेंगे। तीसरा संकल्प, सुख लेना, सुख देना। मम्मा ने कहा था तुम्हें इन 5 तत्वों को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। कोई अगर बहुत जोर जोर से चलता था और चप्पल की आवाज करता था, सबने सुना है, क्या कहा मम्मा ने? धरती को भी कष्ट होता है, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। मैं सुख देने वाली और सुख लेने वाली आत्माओं। और इस बार हम प्रयोग करेंगे श्वास भीतर रोककर, पूर्ण श्वास, फेफड़ों को संपूर्ण श्वास से भर लेंगे जितना भर सके, और उसके बाद में कुंभक रोक देना उस श्वास को भीतर ही, और उस रोकी हुई अवस्था में वो संकल्प करते जाना, और संकल्प को प्रगाढ़ करने की ये विधि है, क्योंकि इस विधि से संकल्प अवचेतन तक पहुंच जाता है, क्योंकि तड़प रही है आत्मा, शॉक की अवस्था है ये, हलचल की अवस्था है, और ये स्मरण रहेगा। सोचो यदि हमें तैरना नहीं आता और किसी ने पानी में धकेल दिया और चिल्ला रहे बचाओ बचाओ बचाओ, और फिर लास्ट मोमेंट में किसी ने बचा लिया, तो क्या यह घटना भूल जाएगी? कितने दिन स्वप्न में आएगी? क्योंकि कहां पहुंच गई? सबकॉन्शियस में, एकदम डीप चली गई है। जो चीज हम रोज अभ्यास करते डीप जाए वो तो जाती नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और ये घुस गई। तो संकल्प कौन सा है? सुख लेने वाली और सुख देने वाली आत्मा हो। स्टार्ट। थक जाने के बाद श्वास छोड़ देना, यथाशक्ति निरंतरम। योग का सिद्धांत क्या है? यथाशक्ति निरंतरम, यथाशक्ति करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। कोई एक मिनट कर रहा है तो मैं भी एक मिनट करूंगा, कोई दो मिनट कर रहा है तो उसको मुझे हराना है। योगासन में और प्राणायाम में यह सिद्धांत कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड नहीं चलेगा, नहीं तो हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा। धीरे धीरे क्षण क्षण सहजता से इस अभ्यास को बढ़ाना है, जितना हो सके श्वास को भीतर रोक के रखना। हठ योग में ये बहुत बड़ा अभ्यास है। हाँ, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनका हार्ट कमजोर है, वो थोड़ा ध्यान से लंबा नहीं रोकना है, जिनको दमा है, अस्थमा है, वगैरह वगैरह, परंतु अभ्यास से कुछ भी संभव है, बढ़ाया जा सकता है उसे। पुराने जमाने के योगियों ने कैसे कैसे अनुभव किए। एक योगी को, सत्य घटना 1948 के आसपास की, जमीन में गाड़ दिया गया, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, और बराबर 6 मास के बाद वो जमीन खोली, बहुत गहरे गड्ढे में गाड़ा उसको। अब नीचे ना भोजन है, ये तो मान लिया भोजन नहीं है, पानी नहीं है, तो हम कहते हैं ब्रदारियन ऊर्जा लेंगे, प्राण ऊर्जा। अब नीचे ना सूरज है, कुछ भी नहीं है, धरती। उसे जब निकाला गया, हजारों की भीड़ लगी थी लोगों की, अखबार में भी आया उसकी कटिंग्स, वो भी हमारे पास एक पेपर था, वो पूरा वर्णन है उसमें। वो योगी बाहर निकला, पूरे कीड़े और वो मिट्टी थी, पर वो जिंदा था, और उसको उठाया गया, और लोग उसको देखने के लिए, वो सीधा हॉस्पिटल देखने के लिए कि सब ठीक है क्या पैरामीटर्स, पर वो जिंदा था। तो योगियों ने बड़े से प्रयोग किए, किस आधार पर? श्वास के आधार पर, संकल्प के आधार पर, जो साइंस कहती असंभव है, साइंस कहती हो ही नहीं सकता। चौथा प्रयोग, मम्मा को देखा किसी ने, मम्मा गेहूं साफ कर रही है, किसी ने पूछा आपकी मम्मा आप गेहूं साफ कर रही है, मम्मा ने कहा गेहूं थोड़ी साफ कर रही हूं। साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म कर रही हूं, साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों द्वारा ये कर्म करा रही हूं। सभी योगियों के जीवन में एक भाव देखा गया है, वो है साक्षी भाव, साक्षी की साधना। साक्षी लक्ष्य भी है, साक्षी साधना भी है। तो अभी अगला संकल्प करेंगे, श्वास भीतर लेकर उस श्वास को जितना हो सके पहले 30 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 1 मिनट 2 मिनट तक जितना हो सके बहुत धीरे धीरे 5-5 सेकेंड हर दिन बढ़ाते बढ़ाते और उस रोकी हुई अवस्था में संकल्प करते रहेंगे, संकल्प करते रहेंगे और उस संकल्प को आंखें बंद करके दोहराना है, रिपीट करना है, करते जाना है करते जाना है उस अवस्था तक कि बस अब अगर श्वास नहीं लिया तो मैं गया। उस अवस्था में श्वास सीधा अवचेतन तक पहुंचेगा, डीप इन द सबकॉन्शियस माइंड। स्टार्ट, पहले एक बार छोड़ देना आराम से और फिर पूरा भर के ले लेना। संकल्प है मैं साक्षी दृष्टा हूं, फिर से एक बार छोड़ दो और फिर भर लेना अंदर। संकल्प है मैं साक्षी दृष्टा हूं। बॉडी रिलैक्स और फिर छोड़ेंगे। संकल्प को दोहराते रहना है, दोहराते रहना है, दोहराते रहना है, दोहराते रहना है। मन की हलचल की अवस्था में संकल्प जब लिए जाते हैं, हलचल अर्थात इस तरह की हलचल, पहले वो खेतों में क्या किया जाता है, हल चलाया जाता है, फिर बीज डालना है, ये हल चलाना है और फिर बीज डाल दो। तो आज मम्मा डे, और आज की जो मुरली है, 3 मुरलियां है पर जो 1 मुरली है उसमें से वो एज इट इज दो 2873 की मुरली, 2873 की मुरली एज इट इज 2872 की मुरली जैसी है, जैसी नहीं है। वो दोनों एक ही है, शायद ये प्रिंटिंग ये होगा, एज इट इज वर्ड टू वर्ड जो कि हमने NK13 में रिवाइज कर चुके हैं और टेस्ट दी है उस पर सबने। इसको इसके लिए इसको छोड़ देते, विधि से सिद्धि वाली राहत हो गई ना, एक छूट गई तो। बट ये कैसे हुआ पता नहीं, शायद आप मुरली डिपार्टमेंट में पूछ सकते हैं, ये तो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड सेम है, तो क्या बाबा वास्तव में इस दिन आए थे? हो सकता है एक ही दिन आए और ये दूसरा दिन जो डाली गई है किताब में एज इट इज है, जरा भी चेंज नहीं, एक शब्द भी नहीं, वर्ड टू वर्ड। तो इसका रहस्य क्या है ये पूछना पड़ेगा। दूसरी मुरली है, 3673 की मुरली, इस मुरली में 3-4 बातें हैं। सबसे पहली बात, मैं कौन हूं, बाबा ने कहा रूहानी पहेली, स्पिरिचुअल पजल, स्पिरिचुअल कनंड्रम। इसमें 3 स्टेप्स बताए, पहला है जानना, दूसरा है मानना, तीसरा है चलना। इस 3rd स्टेप को क्या बनाओ, एवरलास्टिंग। और ये एवरलास्टिंग शब्द अर्थात अविनाशी, उसको कई बार रिपीट किया है बाबा ने मुरली में। और जो कल हम चर्चा कर रहे थे, संकल्पों को रिवाइज जब करते, अनुभव को जब रिवाइज करते, तब वो शाश्वत होते हैं। बार बार उसको रिवाइज करना है। तो आज काम क्या करना है, होमवर्क नंबर वन, ऐसे तीन डायग्राम बनाने हैं। जानना, मानना और चलना, तीन बलून और थोड़े बड़े, और उसमें लिखना है कौन कौन सी बातें मैं जानता हूं ज्ञान संबंधी। दूसरा, किन किन बातों पर मेरा विश्वास है, मैं मानता हूं कि ये सत्य है। और तीसरा, कौन सी बातें हैं जिस पर मैं चल रहा हूं, या फिर मुझे चलना है, अभी चल नहीं रहा हूं। वो यहां तक तो कन्विंस हो गए कि यही सत्य है, कि ये करना चाहिए, पर कर नहीं रहे हो। फर्स्ट स्टेप तो हो गया, जान तो लिया, दिस इज जस्ट नोइंग। जानना अर्थात नोइंग, ये दिनचर्या है, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये ऐसा करना है, ये नहीं करना है, ये किया तो ये नुकसान हो जाता है, ये मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि इसके पहले करके देखा, और जब जब करके देखा तो क्या हो गया, नुकसान ही हुआ, टाइम वेस्ट हो गया बहुत सारा, और फिर पश्चाताप का भाव जागृत हुआ मन में। कल की मुरली में तीन बार एक वाक्य था, कौन सा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तीन बार। कई बार हम सब ने सुन चुके हैं, मम्मा बेंगलोर गए थी, डेढ़ मास मम्मा ने वहां सेवा की, और जब आई और मम्मा से पूछा सेवा कैसी थी, अच्छी थी। मम्मा को खुद की हुई सेवाओं के बारे में बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, बताते बताते ही, चाहे 10 बार हम कहते रहे मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं, परंतु उसके साथ एक क्या जुड़ा रहता है, मैं, अ रिंग ऑफ ईगो। ये जान तो लिया है कि इसमें खतरा है, ये कहां तक आया है, पहले जाना, नोइंग, इसको माना, हाँ ये सही है, दिस इज करेक्ट, ऐसा करना नहीं चाहिए, परंतु प्रैक्टिकल कर्म, चलना, इसमें नहीं आया है। ऐसी पॉइंट्स यहां लिखनी है, कोई सूक्ष्म पॉइंट, ऊपर ऊपर वाली नहीं, कि जो हमें समझ में तो आ गया है, बुद्धि ने मान लिया है कि ये ऐसा है, और ये पूरा निश्चय है कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए, परंतु आदत बनी है अब, इसलिए अपने आप ऑटोमेटिक होता है, वो जो भी आदत बन जाती है वो अपने आप, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप पगडंडी बन गई है, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन में एक ट्रैक तैयार हो गया है, रिपीट रिपीट करते रहो कोई भी चीज, रोज यहां से आदत है 1 बजे यहां से निकलना, डिपार्टमेंट से डाइनिंग में जाना, 1 बजे निकलना, डाइनिंग में जाना, एक दिन किसी ने कहा कि वहां जाने से पहले मुझे मिलना, ठीक है, पता है, सोचा भी है कि उससे मिलना है, फिर भी कदम किस ओर गए, अपने आप डाइनिंग में, वहां जाके फिर रिटर्न आके फिर उससे मिले, क्यों, हैबिट, इसे कहते हैं फोर्स ऑफ हैबिट। तो जो निगेटिव फोर्सेस है, निगेटिव हैबिट्स अपने आप काम करती है तो पॉजिटिव भी करेगी, सेम ये भी है। संकल्प को प्रगाढ़ करने की विधि है, एक उसको दोहराना, दूसरा श्वास को अंदर या बाहर के रोक के रखना, और तीसरी विधि और एक है, जो करना है तो करो या तो छोड़ो, जो योगियों ने की है, पर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ये फास्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, उपवास? गुरु ने कहा टाइम आने पर बताऊंगा, अभी जाओ। दूसरे दिन गुरु उसको बुलाते और कहते हैं, बैठो यहां, आंखें बंद करो और इस जीवन में जितने तुमने पाप किए हैं उन सबको याद करो। जितने तुमने पाप किए हैं सारे पापों को याद करो, आंखों के सामने देखो, उसमें समा जाओ, उस घटना में स्थिर हो जाओ। जब जब तुम्हें पश्चाताप हुआ वो सारी घटनाओं को याद करो। वो शिष्य बैठ गया, अभी अभी आश्रम में आया था नया शिष्य, और सारी चीजें याद करने लगा। उसके जीवन में जो जो अब तक गृहस्थ में जो जो दुख आए, घटनाएं हुई, उसने जो जो गलतियां की, जो जो पाप किए, दूसरों को दुखाया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुरु ने कहा अब आंखें खोलो, अब क्या करो, अब जाओ जाके भोजन करो। उसने कहा इंटरेस्ट ही नहीं है, अभी क्या खाऊं। गुरु ने कहा बस यही है फास्टिंग, यही है उपवास। कुछ समय तक भोगों से दूर रहकर प्रभु चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, ऐसी अवस्था में किए हुए संकल्प प्रगाढ़ होते हैं। ऐसी अवस्थाओं में किए हुए संकल्प सीधा अंदर घुसते हैं, किधर? सबकॉन्शियस। चलो पूरा दिन नहीं, आई एफ इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ समय तो कर सकते हैं। अच्छा, चेंज तो कर ही सकते हैं। रोज नाश्ते में 5 चीजें खाते हैं कोई कोई लोग, वो 5 की 4 तो कर सकते हैं। कोई 4 खाते 3 तो कर सकते, 3 खाते 2 कर सकते, 2 खाते 1 तो कर सकते, 1 खाते उसको बदल तो सकते हैं। महात्मा गांधी जेल में थे, कहां पर, गुजरात में, कहां पर याद नहीं मुझे, स्टोरी है। उनके साथ में सरदार पटेल भी थे, तो महात्मा गांधी की आदत थी सुबह नाश्ते में 10 भिगोए हुए बादाम खाने की। सरदार पटेल ने देखा केवल 10, ओनली 10, ये नाश्ता हो गया। थोड़ा 5 बड़ा क्यों नहीं देते, 10 से क्या होता है, 10 से क्या होता है? उन्होंने कहा हाँ आपने तो सही कहा, 10 से क्या होता है, बढ़ाने से तो कम भी तो किया जा सकता है, चाहे 5 क्या और 10 क्या और 15 क्या, तो क्यों ना मैं 5 कर दूं, और कल से मैं 5 ही करूंगा। ये तो यहां की कंडीशनिंग है, बस प्रोग्रामिंग है, मन को आदत। और भोजन से शरीर, पेट थोड़ी ना भरता है, पेट भरता है संतोष से। पेट किससे भरता है? संतोष से। कंडीशनिंग, यहां की कंडीशनिंग क्या है? तो जब भोगों से, हर प्रकार के भोग से हम दूर रहते हैं, काम, भोजन या बाकी सुविधाओं से, और ऐसी असुविधा की कंडीशन में, ऐसी अनकंफर्टेबल कंडीशन में, ऐसी कंफर्ट जोन से बाहर अवस्था में जो संकल्प लिया जाता है वो संकल्प प्रगाढ़ होता है। ये है मेथड नंबर 3। वापस मुरली की तरफ, तो आज ये काम करना है, ये 3 बनाने हैं, उसमें लिखना है जान तो बहुत लिया है, पर ये कौन सी चीज है वो मत लिख देना, आत्मा परमात्मा वो सारा सारा 7 डे का कोर्स और वो सब मत डाल देना इसमें। जानना अर्थात शुरुआत यहां से करो, या तो सोच में, चिंतन की शुरुआत यहां से करो कि जो चीज मुझे पता है, जो चीज मैं मानता हूं, फिर भी हो नहीं रही है। अमृत वेले का सारा महत्व पता चल गया है, परंतु निरंतरता कहां है? कभी 3, कभी 3.5, कभी 3.25, और हमारे पास कारण तो बहुत अच्छे अच्छे मम्मा को किसी कारण से लेट हो गया, कोई प्रोग्राम था, 11 बज गया, 12 बज गया, सभी ने कहा मम्मा आपकी जो आदत है ना 2 बजे उठने की, आज लेट हो गया ना, तो कल इसको क्या करो, पोस्टपोन। अनाउंसमेंट भी तो होती है ना हमारे इधर, जब बाबा आते हैं, कल सुबह का अमृत वेले का गीत कितने बजे बजेगा, 5 बजे बजेगा। होती थी ना ऐसी अनाउंसमेंट डायमंड हॉल में। तो मम्मा का उत्तर क्या था, गलती या और कुछ था, क्या उत्तर था? पहले अपॉइंटमेंट किसने कहा? बाबा के साथ अपॉइंटमेंट 2 बजे की है। अब गलती हमने की, पहले तो एक श्रीमत तोड़ दी, जल्दी सोना ये श्रीमत है, उसको तोड़ा, चाहे कारण कुछ भी हो, तो क्या दूसरी भी श्रीमत तोड़ू? अपॉइंटमेंट का टाइम फिक्स्ड है। फिर भक्तों का टाइम चालू होता है, ब्राह्मणों का टाइम चालू होता है 3:30 बजे के बाद। इसलिए ब्राह्मण भी भक्तों से कम नहीं है मांगने में, बाबा से, इसलिए उससे भी पहले। ब्राह्मणों का 3:30 है तो तुम्हें थोड़ा पहले अपना उठ के काम करना पड़ेगा। जो बॉस होता है ना ऑफिस में, उसके केबिन में कब जाना ये भी इम्पोर्टेंट है, वो डिपेंड करता है आपके जाने से पहले कौन गया था। अगर वो कोई दूसरा गया और झगड़ा करके आ गया है और आप तुरंत जा रहे हैं बॉस के सामने लीव एप्लीकेशन लेके, 5 दिन की छुट्टी चाहिए, मधुबन जाना है, तो क्या करेंगे? तो वो डिपेंड करता है आप बॉस से कब मिलने जा रहे हो और आपके पहले कौन गए। आप सुबह सुबह जा रहे हो 9 बजे जब अभी अभी बॉस आके बैठे हैं तब जा रहे हो, या 5 बजे जा रहे हो जब हजारों बातें हो गई है कोई रिक्वेस्ट लेके। सुबह सुबह पहुंच जाना एकदम पहले पहले, एकदम थोड़ा भगवान भी तो क्या रहता है, फ्रेश रहता है तब, उसका मूड अच्छा रहता है तब, पता नहीं जो मांगे वो दे दे, तथास्तु कर दे। आशुतोष कहा है ना भक्ति में, शिव कौन है? आशुतोष है, मन चाहा वरदान देने वाला, चाहे दे ही दे। और वही वरदान अगर तुम 5:30 बजे मांगो, तब तक वही वरदान मांगने वाले ढेर सारे ब्राह्मण जाग गए हैं और सब वही मांग रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी। तो ये पहला काम है आज का, ऐसे 3 बनाने हैं, उसमें ये चीजें लिखनी है। दूसरा, इस मुरली में है फॉलो फादर, ये शब्द हमने कई बार सुना है। आज का होमवर्क है, जब फॉलो फादर ये शब्द कहते हैं तो मन में कौन सा चित्र आता है, वो चित्र बनाना है। फॉलो फादर कहते ही हमने ये कुछ चित्र यहाँ लिए हैं। फॉलो फादर, ये फॉलो फादर का चित्र एक है, छोटा बच्चा है जा रहा है अपने पिताजी के पीछे पीछे, तो दिस इज वन पिक्चर ऑफ फॉलो फादर। तो जब फॉलो फादर करो एक, ये दूसरा फॉलो फादर करते हैं तो कौन सा चित्र मन में आता है, ऐसा एक क्रिएटिव चित्र बनाना है फॉलो फादर का। पिताजी बैठे हुए हैं ध्यान में, है ये भी बैठा हुआ है, जो बाप जैसा बाप वैसे बच्चे। फुट स्टेप पर चलने वाले फॉलो फादर, ये एक दूसरा चित्र है फॉलो फादर का। तो अपने क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करना, इग्नाइट योर क्रिएटिविटी, उसके लिए लिखना ड्राइंग बनाना ये बहुत जरूरी है। तो रोज कर ही रहे और थोड़ा ज्यादा ही कर रहे, करो चालू रखो। तो आज बाबा ने इस मुरली में कहा है फॉलो फादर। फॉलो फादर करना ये नहीं अर्थात सेवाधारी बनना, फॉलो फादर अर्थात उसने क्या किया उस परिस्थिति में, उस समय जब हाफूड का हंगामा हो रहा था, इतना क्या क्या वहां हो रहा था, गले में सांप डाल दिया सेंटर का, पानी रुकवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, लोगों ने क्या हंगामा किया, वो सारी न्यूज़ उस समय मम्मा के पास भी तो आती थी, बाबा के पास भी तो आती थी, वो क्या रिएक्ट करते थे ना? नो रिएक्शन, शांत, प्रतिक्रिया नहीं, स्थिर, अचल, अडोल। तो एक बार फिर से प्रयोग करेंगे, श्वास को भीतर रोक देंगे और संकल्प है मैं अचोल अडोल आत्मा हूँ, और इस बार जितना ज़्यादा समय हो सके उतना ज़्यादा समय रोकना है, और एक चीज़ का याद रखना है रीढ़ की हड्डी सीधी हो और बॉडी रिलैक्स पर, एकदम रिलैक्स, टेंशन नहीं दिखना चाहिए, टेंशन नहीं दिखना चाहिए, परंतु रीढ़ की हड्डी कैसी हो, सीधी। कोई भी योग के प्रयोग के समय अगर ये ऐसा आराम से बैठ के करते हैं, पहले तो पूरा भरेगा नहीं परंतु रीढ़ की हड्डी सीधी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ऐसे, बॉडी रिलैक्स, बॉडी फुल रिलैक्स, केवल ये सीधा बस। और ऐसी अवस्था में आप एक बार पहले श्वास आराम से बाहर छोड़ दो और फिर जोर से भीतर लेके उसे अंदर रोक देना है, आंखें बंद कर देनी है, मैं अचल अडोल आत्मा हूं, तब तक उसे करते रहना है, संकल्प को दोहराओ रिपीट, जब तक कि छटपटाने लगे, मछली पानी से बाहर डाली गई है, उस अवस्था तक ले जाओ, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। स्टार्ट, स्टॉप, श्वास लेने की और छोड़ने की आवाज आनी चाहिए, तो ही माना जाएगा जोर से ली और जोर से, अगर छोड़ते समय आराम से छोड़ दिया मतलब वो कुंभक था ही नहीं, कुंभक अर्थात रोक देना, यहां पर बंद कर देना उसको अंदर, ये बॉक्स है इसमें उसको रोक देना, भर देना। तो कहां थे, आज क्या करना है, दूसरा होमवर्क, एक पिक्चर बनाना है, किसका, फॉलो फादर का, कदम पर कदम, वो जितना क्रिएटिव बना सकते हैं सोचकर कि फॉलो फादर अर्थात क्या क्या हो सकता है, उसका एक सिंबल, उसका एक चित्र। तीसरा, इस मुरली में बाबा ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, कर्मयोगी कर्म भोगी, कर्मभोगी अर्थात कर्मों के वश, कर्मों के अधीन, और कर्मभोगी अर्थात क्या, कर्मभोगी के लिए क्या कहा है, कर्मभोगी अर्थात क्या क्या हो सकता है, कर्मों के वश, कर्म इंद्रिय कर्म कंट्रोल में नहीं, और क्या, परतंत्र स्वतंत्र वो सब, वो राजा वाली पॉइंट से, और क्या है, हम कुछ और देख रहे हैं, क्या है, कार्मिक अकाउंट को पढ़ा नहीं, कर्मों में एक भोक्ता या भोग कुछ तो शब्द आया है मुरली में, क्या है वो सुशील भी, कर्म भोगी की परिभाषा है मुरली में, हाँ इस टाइप की कोई परिभाषा है, कर्म भोग अर्थात कर्म भोगी अर्थात जो कर्म के भोग के वश हो जाते हैं, अर्थात कर्म के भोग भोगने में अच्छे व बुरे में कर्म के वशीभूत हो जाते हैं, उन्हें कहा गया है कर्म भोगी। एग्जाम दी, फेल मार्क आ गए, दुखी हो गए, अर्थात कर्म भोगी, क्योंकि बुरे परिणाम को भोग लिया ना, कोई काम किया बहुत अच्छा परिणाम आया, इतने खुश पकड़ पकड़ के सबको सुना रहे, मीठा फल खट्टा फल, मुंडोक का उपनिषद, एक झाड़ है झाड़ में ऊपर की डाली है वहां पे एक पक्षी है, और नीचे की डाली है वहां एक पक्षी है। नीचे का जो पक्षी है वो फल खाते रहता है, कभी मीठा फल खाता है झाड़ का ऊपर, पर हमेशा जब भी खाता है ऊपर के पक्षी को देखता है। अरे वो तो कुछ भी नहीं खा रहा है, वो शांत बैठा है ऊपर का पक्षी। फिर ये दूसरा फल खाता है, खट्टा है, बहुत दुख होता है खट्टा फल खा के। फिर ऊपर देखता है, ऊपर का पक्षी तो वैसा ही है, और ये करते रहता है, कभी इधर कभी इस डाली कभी उस डाली, कभी ये झाड़ कभी वो ढाल, पर हर बार ऊपर देखता है कि ऊपर का पक्षी तो कुछ भी नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे करते करते ऊपर के पक्षी तक पहुंच जाता है, और फिर उसे पता चलता है, अरे ये पक्षी तो मैं ही हूं, वो नीचे वाला तो झूठा था, वो प्रतिबिंब था, ये मैं हूं, ये मेरा केवल प्रतिबिंब था, ये मेरा संपूर्ण स्वरूप था, ये तो मैं व्यक्त अव्यक्त ब्रह्मा। करते करते मैंने देखा मैं फिर वो बन गया। अब ये जो ऊपर का जो पक्षी है ये किसी फल को नहीं खाता, अभोगता है, कर्मों के भोग के वश हो जाते हैं। कर्म किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका फल की कोई आसक्ति नहीं है, फल जो भी मिला उसे स्वीकार कर लेना ठीक है, कुछ भी हो। अभी नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम थी, 24 लाख लोग इस एग्जाम को दे रहे थे भारत में, एमबीबीएस के बाद में पीजी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम थी 23 तारीख को थी, पीजी के बाद एंट्रेंस एग्जाम होती है ना एमबीबीएस के बाद, कितने लोग दे रहे थे भारत के, 24 लाख लोग, सब लोग ट्रेवल्स करके, हजारों लाखों रुपयों की ट्यूशंस कोचिंग क्लासेस सब अटेंड की लोगों ने, और एग्जाम देने के लिए दूसरी जगह पर होटल्स में रुके, करोड़ों के होटल्स का फीस बिल सब कुछ। और रात को 10 बजे 22 तारीख को गवर्नमेंट का मैसेज आया, एग्जाम पोस्टपोन्ड। हलचल मची हुई है मेडिकल फील्ड में। आवाज उठा रहे दंगे, ये वो क्या क्या हो रहा है, कितने लोग दे रहे थे, 24 लाख लोग जिनको एमडी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। क्यों हुआ? क्योंकि शायद नीट पीजी जो यूजी वाली एग्जाम थी एमबीबीएस एंट्रेंस की, उसमें थोड़ा सा पेपर लीक हो गया, तो गवर्नमेंट चाहती है कि, पर लोगों के ढेर सारे प्रश्न है, हो सकता है वास्तव में गवर्नमेंट के पास एक ठोस कारण है इसे रोकने का, कि और ज्यादा कड़ा इसको करना है, पर लोग बहुत प्रश्न उठा रहे, पहले से सोचना चाहिए था ये वो, क्योंकि कितने नुकसान हुआ पैसों का, एनर्जी का, जो प्रिपरेशन, जो एक्साइटमेंट। तो यहां कर्म तो है, पर कर्म के साथ बहुत सारी इच्छाएं जुड़ी हुई है, और वो इच्छाएं पूरी ना होते ही एकदम दुख की अवस्था आ जाती है। लोगों के लेक्चर्स हो रहे हैं, जिन्होंने जितनी कोचिंग एकेडमीज है, लोग बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं, कोई नहीं, वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं, उदास मत हो जाओ, दुखी मत हो जाओ, गवर्नमेंट ने कहा है कि नई देश अनाउंस होगी, पर ये कर्म कैसे है सारे, कर्म भोग वाले है, दुखी होने वाले, क्योंकि आसक्ति है उसमें। और कर्म योगी अर्थात ना कर्म ना कर्म का फल दोनों ही टच ना करे, सेवा की भूल गए, डिटैच्ड, अब वो ज्ञान में आए नहीं आए उसके पीछे ही पड़े है, ठीक है, उसको आना ही नहीं है, उसको आगे बढ़ना ही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो, छोड़ो। तो कर्म भोगी नहीं बनना है, क्या बनना है, भोक्ता भाव को खत्म करना है, ये है मेन पॉइंट, भोक्ता भाव जो है ना उसको हटा देना है। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छा किया, फुल स्टॉप, कॉन्फ्रेंस पूरी हुई, वो अपने राग हम अपने मार्ग, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर लिया सेंटर पर, मेगा प्रोग्राम कर लिया, इसको बुलाया उसको बुलाया, प्रोग्राम हो गया, अब दूसरे प्रोग्राम की तैयारी करो, अब आगे की सेवा की सोचा, अब नई योजनाएं बनाओ, एक भट्टी हो गई एक दूसरी, अब उसी भट्टी का चिंतन मत करते रहो कि बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी, अब आगे की सोचो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यही अध्यात्म है, रुकना नहीं है कहीं। पॉइंट नंबर 3, बाबा ने कहा यह है राजयोग, अभी राज्य नहीं कर सकते वहां राजा क्या बनोगे, तो आज आपको एक राजा का चित्र बनाना है, कुछ भी बना सकते हो ये, और उसमें राजा की क्वालिटीज लिखनी है, कितनी, 10 क्वालिटीज, यहाँ ये 10 हमारे पास लिखी हुई है। ए फॉर अथॉरिटी, राजा अर्थात प्राधिकार, अथॉरिटी हो, राजा अर्थात शौर्य, ब्रेवरी, राजा अर्थात करिश्मा, करिश्मा अर्थात प्रतिभा, राजा अर्थात डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी कूटनीति, वो थोड़ा ये होना चाहिए, डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक का निगेटिव अर्थ नहीं लेना है, राजा युक्त, इसमें क्या कहा, युक्ति युक्त, योग युक्त, शक्ति युक्त, तीन शब्दों का प्रयोग है। एम्पथी, दूसरों के दुखों को जाने, समझे, संवेदनशील हो राजा। मंडल मिश्र को, और मंडल मिश्र और शंकराचार्य के बीच में वाद विवाद होता है और शंकराचार्य मंडल मिश्र को हरा देता है। मंडल मिश्र बहुत प्रसिद्ध है, उसको हराने वाला कोई था नहीं आज तक वाद विवाद में, शंकराचार्य हरा देता है। अब उसे उसका दास बनना है, पर उसके पहले उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा, मैं इसकी पत्नी हूं, और वो उसे काम विकार संबंधी प्रश्न पूछती है, किसको, बाल ब्रह्मचारी शंकराचार्य को। तो बिल्कुल चुप ही हो जाता है, उसको कहता है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम लेता है, जाता है और अपने शिष्यों को कहता है मेरे शरीर का ध्यान रखना, और उसकी आत्मा प्रवेश करती है एक राजा की आत्मा में, और वो राजा की अभी अभी मृत्यु हो गई होती है, और वो राजा कौन होता है, अत्यंत विलासी और भोगी, दिन रात भोग में डूबा हुआ राजा, और ऐसे राजा के तन में शंकराचार्य की आत्मा आ जाती है, और राजा को अभी जलाने ही वाले थे तो वो जाग जाता है, और इसके बाद से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो ज्ञान की बातें कर रहा है, प्रजा के हित का सोच रहा है। पहले तो उसको कहते थे प्रजा मर रही है, राजा कहता था मरने दो उनको, उनका भाग्य है, और खुद भोगों में डूबा रहता था। एकदम आमूल परिवर्तन देखा गया, पहले वो चिंता नहीं करता था, अभी उसे चिंता है हर एक। तो ऐसा प्रसंग आता है एक, तो राजा अर्थात एम्पति, जो प्रजा के हित का सोचे, प्रजा दुखी तो उसे पीड़ा होती है, फेयरनेस, न्यायकारी, ईमानदार, बुद्धिमत्ता, न्यायाधीशता, ये सब राजा। तो आपको ऐसे राजा की 10 क्वालिटीज लिखनी है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ये तो कुछ बताई। तो ये चार आज के होमवर्क है। दूसरी जो मुरली है, लास्ट मुरली, वो आपको रिवाइज करनी है, किससे, वो लोकेशन से, कितने लोकेशंस, लोकेशन नंबर 81 से 90 तक में, वो भी छोटी सी बड़ी है बट सार युक्त अच्छी मुरली है। तो आज से ये सीरीज यहाँ पर पूरी हो रही है। तो 24 दिनों की ये सीरीज थी नूतन क्रांति, जिसमें मुख्य था प्रकृति का सानिध्य, जिसमें हमने कितनी मुरलियाँ रिवाइज की, 74, और जिसमें 24 मुरलियों पर आपने टेस्ट दी। एक लास्ट टेस्ट आज बाकी है, सुशील भाई को हमने कहा था बहुत टफ पेपर सेट करना, पर उन्होंने बहुत रहम दिल है सिंपल पेपर है, तो आज का सबका लास्ट पेपर है, और आपके पास अगले 3 दिन है, तो उन 3 दिनों में आपको मुरलियाँ रिवाइज करनी है। कितनी मुरली रिवाइज करनी है, 50। उन 50 मुरलियों की डेट्स ऑलरेडी दे चुके हैं, नॉन एन के मुरली। तो उन पहले दिन 16 मुरलियाँ, कल फिर 16 और फिर 18, ऐसी 3 दिन मुरलियाँ रिवाइज करना है। रिवाइज करना अर्थात पढ़ते जाना, और टेंशन नहीं रखना है कि एग्जाम का क्या होगा। अभी सुना ना, कर्म भोगी नहीं कर्म योगी, बस पढ़ लो और छोड़ दो, फिर जो होगा सो देखेंगे। फुल प्रिपरेशन करके जाना, बस भगवान भरोसे छोड़ देना फिर लास्ट में। और इन 3 दिनों में, जैसे कल भी कहा था, यहाँ पर डायबिटीज़ की सीरीज होगी, 3 दिन डायबिटीज़। अभी हॉस्पिटल में जो कैंप चालू हो गए हैं उसके विषय में जानकारी दी जाएगी, और डायबिटीज़ की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, डायबिटीज़ कैसे, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, कैसे उससे छूटे, और स्पिरिचुअल, और हॉस्पिटल में जो अगले मास से जो कैंप होगा उसकी डेट क्या होगी, कैसे कॉन्टैक्ट करें, वो सारी जानकारी इन 3 दिनों में दी जाएगी। पर आपको कुछ करना नहीं है इसमें, खाली सुनना है, नो होमवर्क, नो टेस्ट। हाँ, ज्ञान योग से थोड़ा सा हटके जानबूझ के टॉपिक रखा है, क्योंकि 3 दिनों में पूरा रिवाइज करना वैसे भी संभव ही नहीं है। 16 मुरलियाँ कैसे रिवाइज करें यहाँ, 16 और 18, तब जाके 50 पूरी होगी। यहाँ पे सेल्फ रिविजन करना है, और पिछली बार जो रिविजन किया था तो लोगों ने बड़े दोष निकाले उसमें कि आवाज़ नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, जबकि बहुत अच्छे से सारा कुछ रिवाइज किया था। तो फिर भी इसलिए खुद ही रिवाइज करो, और फिर 28 तारीख को खुद ही एग्ज़ाम देनी है, और उसके 3 दिन फिर क्या होगा, उस 3 प्रश्न के रिवीजन हो गए, और 2 तारीख से नई भट्टी चालू होगी, 74-75 की मुरलियाँ, टोटल मुरलियाँ है 98। घबरा मत जाना ये फिगर सुन के, 21 डेज में। वो कैसे करना है वो अभी हमको भी नहीं पता, अभी देखते हैं, थोड़ी प्रेरणा लेनी पड़ेगी ऊपर से। इधर पीड़ा होती है। पेपर सबमिट करके सुशील भाई कह रहे हैं सबमिट का बटन जब आता है तब शिव बाबा स्वाहा, जैसे यज्ञ में पेपर को सबमिट कर रहे हैं तो स्वाहा कर देना, अब जो होगा सो होगा, उसको सबमिट कर देना और फिर आंखें बंद करके ध्यान लगा के 5 मिनट आंखें बंद करना और फिर आंखें खोलना, जो भी है ठीक है, अपने काम में लग जाओ, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं। एक अलौकिक बाबा थे और एक थी माँ रूहानी, मधुबन के फूलों ने सुनाई प्यारी मधुर कहानी, एक थी माँ रूहानी। ओम शांति।
मधुबन